हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 9। संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोस्य इति गोविंदम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, यानी भिक्षा मांगने के लिए उद्यत है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतप, यानी कि भले ही इस समय अज्ञान के कारण, मोह के कारण वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि वो युद्ध करने में असक्षम है और भगवत कृपा से यहाँ पे उनका ज्ञान नष्ट होगा। जैसे यहाँ पे ऋषिकेश शब्द आ रहा है, भगवान उनकी इंद्रियों को डायरेक्ट करेंगे, उनके मन और बुद्धि को शक्ति प्रदान करेंगे और अपनी सक्षमता के कारण वो शत्रुओं को मारने के लिए उद्यत होंगे आगे। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपनी पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत में पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग शब्द और इसमें आ रहा है, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ है जो अज्ञान को मिटाने वाला है, और एक अर्थ है जिन्होंने अपनी नींद को जीत लिया है। एक बार अर्जुन जब द्रोणाचार्य जी के आश्रम में थे, तो द्रोणाचार्य जी ने बोला था अपनी पत्नी को, उनकी गुरी माता को, कि कभी भी इन बच्चों को खाना रात में मत देना, अंधेरे में मत देना। अगर ठीक है, तो एक बार देखा उन्होंने, कुछ कारणवश लेट हो गया और रात में वो लोग प्रसाद ले रहे थे, तो जो दीपक था वो हवा से बुझ गया और भीम उसके बावजूद भी प्रसाद पाते रहे। तो अर्जुन के मन में ये भावना आई कि अरे, जब ये अंधेरे में प्रसाद पा सकते हैं, तो क्या मैं अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास नहीं कर सकता? तो फिर उन्होंने रात की नींद को त्याग करके तीर चलाने का अभ्यास किया और इसी कारण से वो महान धनुर्धर बने, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमें और सीखने को मिलती है कि भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि अपने जो भौतिक कार्य है उसको करने में हम अकुशल हों, लेकिन उन कार्यों को अच्छे से अच्छा करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे अब यहाँ पे जब अर्जुन युद्ध करेंगे तो अनमने ढंग से युद्ध नहीं करेंगे, पूरे मन लगाकर पूरे उत्साह के संग युद्ध करेंगे, लेकिन उद्देश्य होगा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। टेक्स्ट नंबर 10। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे शब्द आ रहा है ऋषिकेश। जैसे भगवान सभी की इंद्रियों को नियमित करते हैं, और हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि अपने भक्तों की इंद्रियों को वो पर्टिकुलरली नियमित करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो भले ही इस समय अर्जुन अज्ञान से ग्रसित हैं और युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान ऋषिकेश उनकी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाएंगे। ये हमें शब्द से समझ में आना चाहिए। दूसरा एक और बात है कि व्यक्ति जगत में चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से समर्थ हो भी, लेकिन अगर उसको ये लगता है कि मेरे कार्य करने से कोई फल नहीं आएगा या फल विपरीत आएगा, तो उसका उत्साह खत्म हो जाता है। तो इसके लिए पहले भी श्लोक आए, शब्द आए थे, विपरीतानि केशव। ये केशव मैं समझता हूँ कि इस युद्ध का फल जो है विपरीत आएगा। तो आप देखिए, जगत में कोई भी आप कार्य कर रहे हो और आपको लगे कि इसका फल जो है जैसा आप चाहते हो उसके ना आकर के बिल्कुल उल्टा आएगा, तो आपका भी उत्साह नहीं होगा करने के लिए। तो अर्जुन की स्थिति कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं थी। अपने माता पिता, अपने पिता माओ को मारना, गुरुजनों को मारना, उनके जैसे धार्मिक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन कार्य था। तो इसी कारण से अर्जुन को इस प्रकार का ज्ञान ग्रसित किया था। ठीक है, टेक्स्ट नंबर 10। लेकिन इस ज्ञान को भगवान नष्ट करेंगे। टेक्स्ट 10। तमुवाचा ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। अर्जुन की जितनी भी विद्वत्ता थी, जो शारीरिक क्षमता थी, सब कुछ, इंद्रियों की शक्ति, सब कुछ उनको उनकी द्विधा से, द्वैत से निकालने में असमर्थ थे। और इससे पहले तक वो भगवान से एक दोस्त की तरह बात कर रहे थे और इस कारण से भगवान नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब वो भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो भगवान बहुत सुंदर उपदेश उनको देंगे। भगवान हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, भगवान ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो शरण में जाने की अपेक्षा करते हैं। कोई भी शरण में जाए, चाहे असुर हो चाहे सुर हो, देवता हो चाहे असुर हो, अगर भगवान के शरण में जाता है तो निश्चित रूप से भगवान उसको शरण देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और जीवन की परेशानियों से उसको बाहर निकालते हैं, निकालने में पूरी तरह से समर्थ हैं। तो भगवान यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरे मित्र की तरह बात कर रहे थे, अब आप मेरे शिष्य बन रहे हो। लेकिन व्यंग नहीं कर रहे हैं, खाली देख रहे हैं कि स्थिति को देख रहे हैं किस प्रकार से अर्जुन बड़े परेशानी में है और उनका शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो कहीं एक होटल के वाइस चेयरमैन है, तो मैं उनको समझा रहा था कि भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपका बच्चे को आपने कंधे पे चढ़ाया है? कहते हैं हाँ हाँ, बहुत बार चढ़ाया है। मैंने कहा क्यों चढ़ाया है? क्योंकि बच्चे से प्रेम होता है और इस कार्य से मेरे को भी बहुत प्रसन्नता होती है और बच्चे को भी प्रसन्नता होती है। मैंने फिर उनके पूछा कि क्या नगर पालिका के एक स्वीपर को आप कंधे पे चढ़ाएंगे? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। तो कारण क्या है? कारण यह है कि बच्चे के प्रति प्रेम है और प्रेम के कारण बच्चा अगर पिता के कंधे पे चढ़ भी जाए तो भी पिता पिता ही रहता है। एक और उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए मेरू पर्वत है या हिमालय पर्वत है जो बहुत ऊंचा होता है, और उसकी चोटी पे कौवा बैठे और उसकी तले में गरुड़ जी बैठे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कौवा जो है वो गरुड़ जी से श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान अच्युत हैं, हर परिस्थिति में वो भगवान ही रहते हैं। अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए हर भक्त का, हर जीवात्मा का भगवान से एक प्रेममय संबंध है, और जैसे वो प्रेम प्रकट होता है तो उस रिश्ते के अनुसार वो भगवान से, या उस प्रेम के भाव के अनुसार वो भगवान से संबंध स्थापित करना चाहता है, तो उससे आदान प्रदान करने के लिए भगवान इस प्रकार से उस भक्त से संबंध जोड़ते हैं या संबंध का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ अर्जुन के वो बहुत प्रिय दोस्त हैं, मित्र हैं, इस कारण से वो उनका सखा बनने के लिए तैयार हुए। लेकिन जब वो उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो भगवान उस प्रकार से भी कार्य कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब अब वो अपने कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो भगवान गुरु भी बन जाते हैं और गुरु बन करके उपदेश देते हैं भगवत ज्ञान का। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि गुरु का कर्तव्य है कि केवल शिष्य का एंटरटेनमेंट या मनोरंजन ना करे, बल्कि गुरु शिष्य का मनोरंजन करने के लिए है ही नहीं। गुरु शिष्यों को इंद्रिय तृप्ति देने के लिए नहीं है, बल्कि इंद्रियों को निग्रह कैसे करे ये सिखाने के लिए होता है। कैसे वो अपने इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करें ये सिखाने के लिए एक प्रामाणिक गुरु का कार्य होता है। तो भगवान यहाँ पर सिखाएंगे अपने वचनों के द्वारा किस प्रकार से अर्जुन इस विषम परिस्थिति में भी उनकी सेवा कर सकते हैं, इस विषम परिस्थिति को में भी ये देख सकते हैं कि ये एक मौका है कृष्ण की योजना में, कृष्ण की सेवा में भाग लेने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। इसे कहा जाता है एक तीर से कई शिकार, एक तीर से दो शिकार नहीं, एक तीर से कई शिकार। भगवान जब भी कोई कार्य करते हैं तो एक साथ बहुत सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। जैसे गोवर्धन लीला हुई तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, तो गिरिराज जी को तो उठाया तो गिरिराज जी को बड़ा आनंद हुआ, और इंद्र से सब ब्रजवासियों की रक्षा हुई और एक हफ्ते तक राधा रानी को, सारे ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण को देखने का भरपूर मौका मिला, सारी गौओं को देखने का मौका मिला, और हम सब लोगों को इस लीला को स्मरण करके अपना उद्धार करने का मौका मिला और आनंद उठाने का मौका मिला। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि भगवान जब कोई लीला करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं और उससे बहुत सारे प्रयोजन का संपादन हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन का उपदेश दिया, लेकिन इस भगवद गीता के द्वारा हजारों हजारों सालों तक लोगों का हृदय का अज्ञान नष्ट होगा। अर्जुन को अज्ञान तो भगवत इच्छा से हुआ, लेकिन हम तो भगवत इच्छा से थे ना माया में पड़े हुए, हम तो अपनी इच्छा से पड़े हुए, तो हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया और इस प्रकार से पूरे जगत के अज्ञान को नष्ट किया। तो ये भगवान की असीमित बुद्धि है। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। बहुत सुंदर बात है, भगवान बोलते हैं कि भक्त, वो भक्त जो शत्रु और मित्र के प्रति समान होता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो मित्र का समान होने का अर्थ क्या है? हम सभी के लिए मंगल कामना करें, हम सभी के लिए सोचें कि वो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करके वो सुखी हो जाए, और इस प्रकार से हम लोगों को शत्रु या मित्र के रूप में देखना बंद कर सकते हैं। जनरली इस जगत में कोई व्यक्ति हमारी इंद्रिय तृप्ति देता है तभी तक हमारा मित्र होता है, और जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा देता है, हमारी इंद्रिय तृप्ति को नहीं देता है, तब उसको शत्रु मानने लगते हैं, प्राय ऐसा होता है। लेकिन भक्त यही देखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने से हम कोई सुखी नहीं हुए, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ तो मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा। तो जो कोई व्यक्ति उनको भक्ति में मदद करते हैं, डेफिनेटली भक्त उनके प्रति भाव ही रखते हैं कि मेरे मित्र हैं, और जो शत्रु के रूप में कार्य भी करते हैं, तो सच्चे भक्तों के हृदय में यही रहता है कि ये जीवात्मा नहीं समझ पा रही है कि हम लोग शत्रु मित्र नहीं हैं, और अज्ञान उसका जैसे नष्ट होगा तो समझ पाएगा। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें, और प्रयास करते हैं कि ऐसे लोग भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आकर के जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो अब आगे इसके श्लोक में भगवान बोलेंगे, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।